अरमान के गुण पॉइंट पर आस्था। वहीं दादाजी ने अभिमान जी को भी आराम करने के लिए कह दिया और उन्हें समझाते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा अब जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में हम कल बात करेंगे, अभी फिलहाल सबको आराम करना चाहिए। वैसे भी आज घर में काफी सारा ड्रामा हो गया है, तो अब सब जाओ, जाकर अपने अपने कमरे में आराम करो। अब आगे। जल्दी ही सब लोगों के जाने के बाद दादाजी ने एक नज़र मिनी हॉस्पिटल की ओर देखा और अरमान के पास आ गए और उसी के बराबर में बने हुए बेड पर लेट गए, क्योंकि इस सिचुएशन में वो अरमान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर अरमान एक बार फिर पुराना डेविल बन चुका है तो रात को उसके नाइटमेयर जरूर आएंगे। वहीं आस्था, जो कि अरमान की कमी पूरी तरह से महसूस कर रही थी, अरमान के होते हुए भी अरमान उसके साथ नहीं था, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कान्हा जी से शिकायत करने लगी, कान्हा जी आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप हमारे पति को हमें लौटा दीजिए, कान्हा जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। आस्था भले ही 15 दिन अरमान से दूर रह रही थी, लेकिन अब अपने कमरे में आने के बाद अरमान को याद करते करते आस्था की आंखें आंसुओं से पूरी तरह से भींग चुकी थीं। आस्था कितनी ही देर तक रोती रही, तड़पती रही, वो जानती थी कि अंश इस वक्त नानी माँ के पास है, इसलिए थोड़ी देर वो अरमान के कमरे में सुकून के कुछ पल गुजारना चाहती, उसके बाद वो नानी माँ के पास जाने वाली थी। लेकिन अब अरमान के कमरे में आने के बाद उसकी यादें पूरी तरह से ताज़ा हो उठी थी। किस जगह, कहाँ कहाँ वो लोग एक दूसरे से प्यार किया करते थे और यहाँ से जाने से पहले उन्होंने कितना सारा प्यार किया था। थोड़ी देर बाद आस्था वॉशरूम में गई। वॉशरूम में कितने ही रोमांटिक मोमेंट उन्होंने साथ में गुजारे थे। हाँ, कुछ कड़वी यादें भी उस वॉशरूम से जुड़ी हुई थीं। एक एक करके वो प्यार भरे लम्हे आस्था को अचानक याद आने लगे। कभी वो बालकनी में खड़ी होती तो कभी वो बेड पर बैठती। इन द लास्ट अचानक रोते हुए आस्था बेड के बिल्कुल नीचे की साइड कोने पर बैठ गई थी, और नीचे फर्श पर बैठने के बाद वो बेबसी से पूरे कमरे को गौर से देखने लगती है। ये कमरा उसका होकर भी आज उसका नहीं था। फिलहाल इस बीच आस्था को अपनी यादें समेटते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका था, क्योंकि वो काफ़ी देर से कमरे में इधर उधर टहल रही थी और उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें चल रही थीं, तो इसीलिए अब उसकी पलकें अचानक बोझिल होने लगीं और नीचे फर्श पर बैठे बैठे ही उसने अपना सर बेड के कोने पर रख दिया था, और कब उसकी आंख लग गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं पूरे 2.5 घंटे बाद एक बार फिर अरमान की आंखें खुल गईं। अरमान तुरंत अपना सर पकड़कर बैठ गया और उसने तुरंत अपनी घड़ी पर वक्त देखा कि अभी रात के 11 बजे थे। उसने अपने पास में लेटे हुए अपने दादाजी को बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखा, और फिर सोने से पहले ध्रुव ने उसे जो सारी बातें बताई थीं एक एक करके एक बार फिर वो सारी सिचुएशन अरमान की आंखों के सामने उभरने लगी, और साथ ही साथ दादाजी ने जो आस्था को लेकर उसे जो कहानी सुनाई थी वो भी उसके दिमाग में घूमने लगी थी। अरमान ने शांत मन से सोचा, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस लड़की को इस तरह से अरमान सिंघानिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फिलहाल अरमान के लिए अब हॉस्पिटल में रुके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। उसे मिनी हॉस्पिटल में काफी ज्यादा सफोकेशन महसूस हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत उठा और अपने कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन जैसे वो बाहर निकला उसने देखा कि टाइगर मिनी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ था। काफी रात हो चुकी थी, टाइगर अपनी आंखों में आई नींद को रोकते हुए पूरे होशो हवास में बाहर खड़ा था। अब जैसे ही अरमान बाहर निकला वैसे ही टाइगर तुरंत एक्टिव हो गया। अरमान ने टाइगर को गौर से देखा। नींद रोकने के चक्कर में टाइगर की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं, इसलिए उसने टाइगर को देखकर गहरी आवाज में कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। अरमान के शब्द सुनने के बाद टाइगर ने केवल अपना सर हां में हिलाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। वहीं अरमान ने देखा पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं, तो उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाई, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, शायद सभी लोग गहरी नींद में सो गए होंगे। ये सोचते हुए अरमान अब सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही अरमान अपने कमरे में पहुंचा तो वैसे ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था, क्योंकि उसके शानदार बेड पर आस्था आराम से सर टिकाकर बैठे बैठे सो रही थी। ये देखकर अरमान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और उसने अपने दांत भींच लिए थे, और एक बार फिर आस्था को अपने सामने देखने के बाद अरमान की आंखों के सामने उसका उसे चांटा मारना याद आ गया था कि आस्था ने किस तरह से उसे चांटा मारा था। ये याद आते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसका बस चलता तो वो अभी आगे बढ़कर आस्था का गला दबाकर उसकी जान ले लेता। इस वक्त आस्था को अपने कमरे में देखकर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि अरमान के कमरे में किसी फीमेल नौकरानी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, तो इस तरह से आस्था का वहां मौजूद होना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो दांत भींचते हुए आस्था को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जो फर्श पर बैठे बैठे बेड के कोने पर अपना सर रखकर बेफिक्र होकर सो गई थी। वो जलती हुई नजरों से उसे देखते हुए सोचता है, आखिर इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये मेरे कमरे में आ गई। वो भी अरमान सिंघानिया पर हाथ उठाने के बाद। क्या इस लड़की को ये नहीं पता कि सिंघानिया मेंशन में किसी भी लड़की को मेरे रूम में आना अलाउ नहीं है। अब अरमान आस्था को इतने सुकून से सोते हुए तुरंत आगे बढ़ता है। उसका दिल तो किया कि वो तुरंत आगे बढ़कर आस्था का हाथ पकड़े और उसे जगाकर झटक दे, लेकिन जैसे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आस्था को छूने के लिए उठाया तो वैसे ही अनकंफर्टेबल होकर उसने अपना हाथ तुरंत वापस खींच लिया, क्योंकि वो एक लड़की को इस तरह से छू नहीं सकता था। अरमान सिंघानिया को लड़कियों से एक अलग ही तरह की चिढ़ मचती थी और आस्था को सामने देखने के बाद उसकी चिढ़ और ज्यादा बेकाबू होती जा रही थी। तब उसने गुस्से से तमतमाते हुए आस्था को थोड़ा तेज आवाज में पुकारा, ए लड़की उठो, यहां आकर क्यों सो रही हो तुम? अरमान ने आस्था को बहुत रोबदार आवाज में जगाने की कोशिश की थी, लेकिन आस्था टस से मस नहीं हुई, क्योंकि एक तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी, ऊपर से वो एक लंबा सफर तय करके आई थी तो वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी, इसीलिए आसपास की आवाज उसके कानों तक सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन अरमान के इतने कड़क अंदाज में बोलने के बाद भी जब आस्था नहीं उठी तो ये देखकर अगले ही पल वो झुंझलाकर रह गया। अरमान ने सोचा, ये लड़की क्या पागल है, क्या इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? और इसका वो बच्चा कहाँ है? इतने छोटे बच्चों को छोड़कर ये इस कमरे में क्या कर रही है? कुछ सोचते हुए अरमान तुरंत वापस दरवाजे के पास गया, दरवाजा खोला और आसपास यहां वहां देखने लगा कि शायद उसे ध्रुव, आकाश, सुमित या कोई भी नजर आ जाए, जिसे कहकर वो इस लड़की को जगा सके और उसके बाद वो इस लड़की को यहां से बाहर निकाल फेंके। लेकिन जब उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और जल्दबाजी में वो सही से दरवाजा बंद नहीं कर पाया और सीधा एक बार फिर गुस्से में आस्था के सामने आकर खड़ा हो गया। तब उसने देखा कि साइड के टेबल पर एक कांच का ग्लास रखा हुआ है, तो अरमान ने इरिटेट होते हुए तुरंत वो ग्लास उठाया और आस्था के ठीक बराबर में छोड़ दिया, लेकिन ग्लास टूटने की आवाज के बाद भी आस्था की नींद नहीं खुली।
तो ये देख के अरमान पूरी तरह से आग बबूला हो उठा था। ऊपर से उसे बार बार आस्था का चांटा मारना याद आ रहा था, इसीलिए अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। और अब ये लड़की सिंघानिया मेंशन में रहेंगी, ये बात उसे अंदर अंदर से काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। अरमान ने आज तक अपना फैसला नहीं बदला था, लेकिन दादाजी ने जब से उसे ये बताया है कि इस लड़की की जिम्मेदारी अरमान ने ली है और ध्रुव को एंटीडोट बनाने के लिए नानी माँ उसकी बेटियों की जरूरत है, तो मजबूरी में उसने उन्हें वहां रहने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब आस्था का यूं अपने कमरे में बेपरवाही से सोना उसे बहुत इरिटेट कर रहा था कि कोई इस तरह घोड़े बेचकर कैसे सो सकता है, क्या इस लड़की को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? अब अरमान एक बार फिर झल्लाते हुए चीखा, ए लड़की उठो, यहाँ क्यों सो रही हो तुम? नौकर और सर्वेंट्स के लिए अलग रूम है, तुम्हें इस तरह से यहाँ मेरे कमरे नहीं सोना चाहिए था, ये मेरा कमरा है, उठो। आस्था को तो घोड़े बेचकर सोने की आदत थी और वैसे भी वो काफी थकी हुई थी और देर से सोई थी, इसीलिए अरमान की आवाज सुनकर भी वो महसूस ही नहीं कर पा रही थी। अब आस्था को उठते हुए ना देखकर अरमान रुका और खुद से सवाल करने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हो क्या गया है, मैं इस लड़की को इतनी ईजी तरीके से उठाने की कोशिश कर ही क्यों रहा हूँ? इतना सोचते ही अरमान डेविल स्माइल करते हुए खुद से बड़बड़ाया, मुझ पर हाथ उठाया था ना तुमने, अब तुम डेविल की झलक देखोगी। ये सोचकर अरमान कड़वाहट से मुस्कुराते हुए तुरंत ही अपनी बंदूक लेकर आस्था के ठीक सामने खड़ा हो गया था। आस्था जो कि बेहबर होकर बेड के कोने को अरमान की गोद समझकर सो रही थी, अरमान की खुशबू को पूरी तरह से बेडशीट और कमरे में महसूस करते हुए वो गहरी नींद में सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। उसे तो इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था कि एक बार फिर उसका डेविल पति उसके सामने बंदूक ताने खड़ा हुआ है और उसने उसे गन पॉइंट ले रखा है। फिलहाल बिना देरी किए अरमान ने आस्था के ठीक बराबर में शूट कर दिया, गोली बेड में सीधे अंदर जा लगी। अब अचानक गोली की आवाज सुनते ही आस्था एकदम से डर के मारे तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी ओर दरवाजा खुला होने की वजह से पूरे के पूरे मेंशन में गोली की आवाज गूंज उठी थी, क्योंकि अरमान ने दरवाजा ठीक से क्लोज नहीं किया था। अब तो सबके सब गोली की आवाज सुनकर पूरी तरह से डर के मारे थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि गोली की आवाज मेंशन में वे लोग पहले भी सुन चुके थे। अब सब लोगों ने एक दूसरे की ओर लाचारी से देखा। वहीं नानी माँ, जिन्होंने बड़े ही प्यार से अंश को सुला रखा था, अब वो डर के मारे उठकर बैठ गई थी और उन्हें अनजान सा डर सताने लगता है। उन्हें लगा शायद कहीं किसी दुश्मन ने फिर से कोई हमला ना कर दिया हो। फिलहाल वो अच्छे से अपने कमरे की कुंडी लगाकर अंश को पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि अब नानी माँ अंश की सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पहले भी सिंघानिया मेंशन पर हमला करने की साजिशें की जा चुकी थीं। फिलहाल अभी सभी लोग तुरंत दौड़कर हॉल में इकट्ठा हुए और सभी को एहसास हुआ कि गोली की आवाज़ अरमान के कमरे से आई है। सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर डरते हुए देखा और तुरंत दौड़कर अरमान के कमरे में आ पहुंचे। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने देखा कि आस्था फर्श पर अपने कानों पर हाथ रखकर सिसक रही थी और अरमान उसे जानलेवा नजर से देख रहा था।